Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Shuddhatmane Namah. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vajjayanam. Namo Loe Savasahum. अभी हम जिनेंद्र भगवान ने बताए हुए जो प्रयोजनभूत सात तत्व है उसकी बात देख रहे हैं। हमारा प्रयोजन क्या है वो हमने देख लिया था कि सुख प्राप्त होना ही हमारा प्रयोजन है। तो सुखी होने के लिए, क्योंकि सच्चा सुख तो अतीन्द्रिय सुख है, हमने अभी तक इंद्रिय जनित सुख को सुख माना था। इंद्रिय जनित का अर्थ क्या है? इंद्रियों से तो हम मात्र पुद्गल को ही जान सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं, परंतु ये सब क्या है? सारा पुद्गल है। पुद्गल को जानते हैं और मानते हैं हम सुख उपभोग, सुख का उपभोग कर रहे हैं, परंतु ये सुख है नहीं है, क्योंकि इंद्रियों की जो इच्छा है ना, ये इच्छा से पीड़ित होते हैं, तो इच्छा का इलाज करने के लिए हम इनकी ओर दौड़ते हैं। जैसे कोई खुजली की बीमारी है तो खुजली करने से सुख मानता है ना, खुजाता ही चला जाता है, उसको रहा नहीं जाता अंदर से, तो क्या है वो और दुखी होता है, क्योंकि मालूम है कि उसकी तो पीड़ा, उसका जो दर्द है, उसकी जो बीमारी, वो तो बढ़ने ही वाली है। ऐसे ही इंद्रियों के द्वारा सुख प्राप्त करने की इच्छा करता है, क्योंकि इसको वो इच्छा की पीड़ा सहन नहीं होती। इच्छा इटसेल्फ पीड़ा है, और वो इतनी तीव्र पीड़ा हो जाती कि वो चाहता है ना कुछ इसको मैं इंद्रियों के विषयों को जानकर उसकी पीड़ा कम कर दो। यानी वो तो जानने की बात नहीं कर रहा है, वो तो भोगता हूं ऐसा मानता है, और इसलिए नए नए तरीके सोचता भी है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी ये चक खाकर सुखी होना चाहता है, कुछ देखकर, कुछ सुनकर सुखी होने की कोशिश करता है। तो सच्चा सुख तो अतीन्द्रिय सुख है। अतीन्द्रिय आत्मिक सुख है, जो आत्मा में से ही उत्पन्न होता है, क्योंकि जो जहां है वहीं से प्राप्त होगा। पुद्गल में सुख नाम का गुण ही नहीं है, तो उसमें से प्राप्त कैसे होगा? तो सुख गुण आत्मा का विशेष गुण है, यानी हमारा अपना विशेष गुण है, और हम अपने में से उसको प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, सिद्ध भगवान में भी अनंत सुख है, परंतु उनका सुख वो भोगेंगे, हमको कुछ काम का नहीं है। उनका दर्शन करेंगे, उनको नमस्कार करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो कुछ वो सुख हमें प्राप्त नहीं होने वाला है। इसलिए अपना सुख अपने से ही प्राप्त होने वाला है, तो उसको प्राप्त करने के लिए ये जो सात तत्व है उसका यहाँ पहले अभी हम नाम क्या है, उसका स्वरूप क्या है, ये अभी हम देखने जा रहे हैं। देखो मेरे में तो 102 पेज है, आपका पृष्ठ है पत्रांक 20 में, जहां सेकंड पेज पर सात नंबर दिए और सातों के नाम और लक्षण बताए। कौन सा है गुजराती पेज नंबर?
126।
पत्रांक 20 में सेकंड पेज होगा, सेकंड या थर्ड पेज?
129, 130।
1, 2, 3, 4 नंबर से
130।
ओके, देखो यहाँ जहाँ लिखा है ना, वो बोल्ड लेटर में लिखा है, वो जीव तत्व, वहां से शुरू करते हैं। पहला है जीव तत्व, उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन यहाँ दे रहे हैं, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं, उसके ऊपर वाला मैं बताती हूँ। 130 पेज,
130 पेज
आपका हिंदी गुजराती
देखो मैं पैराग्राफ पढ़ती हूँ, वो देखना आप वहाँ कहाँ है।
उसका आगे का पेज,
सात तत्व का स्वरूप जो है ना, उसके नेक्स्ट पेज।
अभी जीव लिखा है उसमें,
देखो जीव तत्व सात अंग नाम लिखे, जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व, ये सात तत्व है, मिला। जीव और अजीव ये द्रव्य तत्व है, इसकी हमने सभी बात की थी। अन्य पांच तत्व पर्याय तत्व है, अर्थात वे जीव और कर्म की अवस्थाएं हैं। ये हर एक तत्व में जो पर्याय वाले तत्व है ना, उसमें द्रव्य और भाव ये दो दो लगाएंगे। जीव की भी पर्याय उसको भाव कहेंगे, और पुद्गल की यानी कर्म की पर्याय है उसको द्रव्य कहेंगे। पहले अभी क्या करेंगे हम, प्रथम हम सरल और साधारण परिभाषा देखेंगे, बाद में उसका विस्तार करेंगे। पहले उसके लक्षण बताएंगे, एक एक परिभाषा क्या है, जीव तत्व किसे कहना, अजीव तत्व किसे कहना, इसकी बात पहले हम देखेंगे। तो जीव तत्व की परिभाषा यहां बताई है, जिसमें ज्ञान दर्शन आनंद है वह ज्ञानानंद, ज्ञानानंद यानी ज्ञान और आनंद स्वभाव ही, यानी जिसका स्वभाव ही ज्ञान और आनंद है, ऐसे आत्मा जीव तत्व है। क्या कहा, ज्ञान और आनंद स्वभाव ही ऐसा जो आत्मा है वही जीव तत्व है। अजीव तत्व किसको कहना, कि जिसमें ज्ञान दर्शन आनंद नहीं है, ऐसे कौन है, जीव के अलावा जो अन्य है कौन है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये जो अन्य पांच अजीव द्रव्य है ना, उसको अजीव तत्व भी कह दिया यहाँ पर। परंतु यह जीव और अजीव तत्व की सामान्य परिभाषा आगम भाषा हुई। क्या कहते, ये तो इन जनरल कथन हुआ कि जितने ये सारे जीव है ना, उनमें अपना अपना ज्ञान दर्शन आनंद है, तो वो अपने अपने लिए वो सारे जीव तत्व है। और जिसमें ज्ञान आनंद आदि नहीं है वो क्या हुए, सारे
अजीव
तत्व है। अब ये सामान्य क्यों, आगम परिभाषा क्यों कही, जैसे हमें कहना इस विश्व में माताएं कितनी हैं, तो जिनको जिनको बच्चे उन सबको हम कहेंगे क्या, ये माताएं हैं, है ना। परंतु मैं पूछूं मेरी माता कितनी है इस विश्व में, एक ही होगी ना, तो सब माताएं मेरे को झगड़ने का है मेरे से, क्या हम माता नहीं है क्या, तो क्या वह सही है, नहीं। माता है परंतु वो मेरी माता नहीं है, मेरी माता एक अकेली होगी कोई स्त्री जिसने मुझे जन्म दिया है, ये जो जैसी बात है वैसे यहाँ कहते हैं। ये तो सामान्य परिभाषा हुई, कौन सी, कि जिसमें ज्ञान दर्शन आनंद है वो जीव तत्व है, ये जीव तत्व की सामान्य परिभाषा हुई। इसको आगम यानी इन जनरल सभी द्रव्यों में जो लागू होता है वो बात कह दी। अब हम अध्यात्म की भाषा सीखने जा रहे हैं। अध्यात्म यानी अधि प्लस आत्मा, आत्मा के अपने आत्मा के नजदीक जाना है, तो इसलिए जिसमें मेरा है उसको हम मैं कहेंगे, और जो मेरा नहीं उसको पर कहेंगे। तो अब हम इसकी परिभाषा देखते, देखो तत्वों के माध्यम से हमें अपनी स्वयं की पहचान करनी है, इसलिए इसी परिभाषा को थोड़ा सुधार कर अध्यात्म भाषा में लिखना पड़ेगा। अब यहां अपेक्षा बता देंगे, जिसमें मेरा, इसलिए यहां मेरा ये बोल्ड लिखा है, उसमें लिखा है कि नहीं बोल्ड,
मारू,
हाँ मारू, कि जिसमें जीव तत्व किसे कहना, अभी ये नई परिभाषा फिर दोबारा यहां दे रहे, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन आनंद है वह जीव तत्व है। अब इस विश्व में अपने लिए अपना जीव तत्व कितने हो गए, एक मैं स्वयं, कि जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन है, सिद्ध भगवान में सिद्ध भगवान का उनका ज्ञान दर्शन है, उनके ज्ञान से हम थोड़ा जानेंगे कि नहीं जानेंगे, यहाँ सब अब्जोपति बैठे हैं, तो एक अब्जोपति दूसरे अब्जोपति से एक रुपया दे दो, मुझे अभी कुछ भूख लगी है, ऐसे भिखारीपन करेगा थोड़े,
कभी
नहीं करेगा। तो यहाँ तो क्या है, ये सब अपने अपने ज्ञान दर्शन से युक्त है, और किसी एक का ज्ञान दूसरे के लिए कोई कार्यकारी नहीं होता, क्योंकि दो द्रव्यों में तो अभेद दीवार है, जिसको कहते हैं ना द्रव्य क्षेत्र काल भाव, अपने अपने स्वचतुष्ट के बाहर जा ही नहीं सकता। तो प्रत्येक द्रव्य का, जो जीव द्रव्य का, उसका जो ज्ञान दर्शन आनंद आदि जो स्वभाव है वो उसके अपने में है। तो अब यहां जीव तत्व की नई परिभाषा हुई, कौन सी, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन आनंद है वह जीव तत्व है। ये हम आगे चलकर इसकी सारी परिभाषा देखेंगे, जीव द्रव्य और तत्व में क्या अंतर है उसको भी देखेंगे। अब अजीव तत्व की परिभाषा फिर बदल गई, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन आनंद नहीं है। पहले जो हमने परिभाषा देखी थी उसमें सारे अजीव द्रव्य लिए थे, अब जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं है ऐसा कौन कौन होंगे। अभी मैं कहूं जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं है, तो इनमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं है, आप में मेरा ज्ञान दर्शन नहीं है, आप में नहीं है, अरिहंत भगवान में नहीं है, सिद्धों में नहीं है, उनमें अपना अपना है। मेरे लिए ये शब्द महत्व का है, मेरे लिए मैं स्वयं जीव तत्व हूं और मेरे लिए सभी जीव
अजीव,
मैं एक छोड़कर अनंत जीव अजीव तत्व में आएंगे। हो
तत्व
बोलना, तत्व बोलना, अजीव द्रव्य नहीं कहे उसको, अजीव तत्व, वो तो अजीव तत्व में आएंगे ही आएंगे सारे पुद्गल, फिर वो सारे अन्य जो अजीव द्रव्य है वो भी अजीव तत्व में चले जाएंगे। जब हम द्रव्यों की बात करते थे तो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये अजीव कहा हमने, अजीव द्रव्य कहा था। अब अजीव तत्व में किसको किसको लेना, एक और तो मैं स्वयं जीव तत्व और दूसरी ओर पूरी दुनिया आरखा विश्व
सारा लोक,
उसमें अनंत जीव आ गए मेरे अलावा, अनंत जीव, अनंत अनंत पुद्गल, धर्म धर्म आकाश और काल जितने हैं सब, ये सारे अजीव तत्व में आ गए। यानी अपने को एक और बाकी पूरे विश्व को पूरी दुनिया को अलग, स्व और पर करना है ना हमको, हमें स्व को जानना है, इसलिए स्व यानी मैं स्वयं जीव तत्व। फिर उस स्व में अरियंत को, सिद्धों को, किसी को नहीं रखना है ना, अपने माता पिता को रखना है ना अपने पुत्रों को रखना है, स्वयं ने बस मैं स्वयं, जिसमें मेरा ज्ञान यानी जो स्वभाव है उसको स्व में ले लेना, जीव तत्व में ले लेना। तो जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन आनंद नहीं है, ऐसे मेरे अलावा अन्य अनंत जीव, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये सब अजीव तत्व में आते हैं। देखो तो सही, अपेक्षा बदलते ही कथन भी बदल गया। पहले तो सब जीवों को जीव तत्व कहा था, अब मेरी अपेक्षा कहने पर मैं स्वयं अकेला जीव तत्व और बाकी अन्य अनंत जीव सब आ गए अजीव तत्व में चले गए। मेरी अपेक्षा से अन्य सब जीव अजीव तत्व में शामिल होते हैं। क्या अरियंत और सिद्ध भी अजीव तत्व? लोग सुनते तो हलबली मच जाती है। सोलापुर में इंद्रध्वज विधान हुआ था 1992 में हुआ था शायद,
उसके पहले
हाँ, तो वहां तो 5000 से भी ज्यादा लोग जमा हुए थे और तब मैंने वो छड़ा ला ली थी वहां पर, ये कुमचंद जी भारील वगैरह सब आए थे वहां पर, बड़ा विधान हुआ था। तो मैंने ये बात की उसमें जो जीवादि प्रयोजन भूत तत्व वगैरह आता है तो उसमें अजीव तत्व का स्वरूप बता दिया, तो अरिहंत भगवान अजीव तत्व है, सिद्ध अजीव तत्व है, एकदम खलबली मच गई इतने। फिर वो सारी अपेक्षाएं समझाए, बहुत समझाए, फिर भी लोग इतने इसको कहते ना
बेचैन
हो गए, कुमचंद जी के पास कितने चले गए, फिर मेरे से भी बहुत कुछ ऐसे प्रश्नोत्तर चलने लगे, फिर दूसरे दिन प्रवचन में पूरे प्रवचन में बता दिया कुमचंद जी ने कि इसको अजीव तत्व ही कहेंगे, क्योंकि अध्यात्म में अभी अपना अनुभव करना है तो दृष्टि सबसे हटानी है। तो जब तक हमको अरिहंत सिद्धों की महत्ता आती रहेगी, देखो उपदेश तो उन्हीं से प्राप्त हुआ है, अरहंतों से उपदेश प्राप्त होने पर लक्ष्य अपना करना है, भक्ति करेंगे भगवान की क्योंकि उन्होंने उपदेश दिया है, परंतु लक्ष्य उनका जब तक है तब तक अपनी ओर लक्ष्य नहीं जाएगा। जो बात आई थी ना तीर्थंकरों का उपदेश सुनते सुनते ही रहेगा तो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा?
नहीं होगा,
नहीं होगा। सुनकर जो समझाया है उन्होंने भी आत्मा का स्वरूप समझाया है, तो जिसको समझाया है उसे देखेंगे तो ही अनुभव होगा। जैसे हमने बच्चे को चंद्रमा दिखाया, वो देख ऐसा करके हाथ से इशारा किया, उंगली दिखाई, और बच्चा कहाँ देखता रहा, उंगली की तरफ। उसको चंद्रमा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो उंगली का लक्ष्य छोड़कर जहां इशारा किया है उस दिशा में देखेगा तो उसको चंद्र दिखाई देगा। ऐसे ही भगवान ने तो वाणी द्वारा इशारा किया है कि तुम कौन हो। हम भगवान की वाणी ही सुनते रहे और पूजा ही करते बैठे तो सच्चा शिष्य किसको कहेंगे? अरे वो वाणी सुनकर जो अंतरंग में परिणमन कर जाएगा अपने आत्मा की ओर, अंतर्मुख परिणाम द्वारा अपने आत्मा को जानेगा, तो उसने सही पहचान ली ना वाणी को, तो उसके लिए वो वाणी कार्यकारी है। ऐसे यहां क्या लेना है कि मेरी अपेक्षा अन्य सब जीव अजीव तत्व है, तो अरिहंत और सिद्ध भी, हाँ वे तो अनंत ज्ञानी है, अनंत सुखी है, मेरी अपेक्षा बात चल रही। जब हम स्वयं जैन है तो हम स्कूल में जाते हैं तब क्या कहते, बाकी कौन है सारे? अजैन है। वैसे ही मैं स्वयं जीव तत्व हूं अकेला, तो मेरी अपेक्षा, अपेक्षा लगाना, मेरी अपेक्षा अन्य सभी जीव क्या हो जाएंगे? अजीव तत्व। आपके लिए मैं अजीव तत्व है ना, मेरे लिए आप सब अजीव तत्व। तो इसे सुनते ही बड़ी खलबली मचती है।
मुकुंद बात नहीं बैठी आपको
बराबर, सही बात, क्योंकि एक तरफ राम
एक तरफ गाम, ये आत्मा राम को एक अलग करना है बाकी अन्य जीवों से भी। तो यह बात सुनकर मेरे चचेरे भाई अविनाश ने कहा था, अरे बहन मुझे तो रात भर नींद नहीं आई, सचमुच ये बात हुई थी। उसने जब सुना ये तो दूसरे दिन बढ़ता था, मुझे कल रात भर नींद नहीं आई, आपने तो अरिहंत और सिद्धों को भी अजीव तत्व कह दिया, ये कैसी बात है? एकदम ऐसे हड़बड़ाहट हो गई उसको। अरिहंत
दुख की बात है, ये जो मल्लीनाथ की जो बात की ना, यदि आप शास्त्र सबको पढ़ाए और सब लोग पढ़ने बैठे तो ये गलत फहमी निकल जाती।
अभी वो तो बात मैंने पंचलब्धि के पुस्तक में लिखी है, पंचलब्धि पुस्तक में आखिर में ये बात लिखी है मैंने, उनके तीन भवों को सिद्ध करके दिखाया वहाँ पर,
क्योंकि कोई शास्त्र का
पढ़ता ही नहीं ना,
बस ऐसे चालू करता, सुन लिया बात कर लिया,
क्योंकि क्या है कुछ न कुछ हमारी स्पेशलिटी अलग है, दिखाने की कोशिश करते हैं ना लोग, क्या करें, समझना चाहते तो जरूर समझेंगे, हाँ क्योंकि वहाँ प्रूफ है अपने पास, ऐसी कोई बात नहीं है। और यह किसी में हमारे तुम्हारे होता ही नहीं, भगवान तो भगवान है और उनका ये स्वरूप है, इसको अगर नक्की नहीं करेंगे तो सम्यक दर्शन हो नहीं सकता भाई, वो आगे के रास्ते बंद होते, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही गलत माना है ना, ये तो फॉरमोस्ट कंडीशन है सम्यक दर्शन के लिए, सच्चे देव सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र की प्रतीति, उसमें कोई भी पोल पट्टी चलती हो तो वो तो गृहित मिथ्यात्व में चला जाता है, गृहित मिथ्यात्व। अगृहित मिथ्यात्व की बात आगे है, सात तत्वों की सही श्रद्धा हो जाए और उसमें से जीव अपने आत्मा का अनुभव करे, परंतु अभी ये सच्चे देव का पता नहीं है तो आगे उसके तो गृहित ही नहीं गया, अभी अगृहित का कैसे? आपको बताया था ना बनन निकालना है तो शर्ट पहले निकालेगा तो निकलेगा, तो वैसे पहले गृहित रखा और अगृहित निकालने के लिए मिथ्यात्व क्या ये भी मालूम नहीं है, और बस ध्यान करे और आत्मा का अनुभव हुए, कभी नहीं हो सकता उसके, तो उपदेश भी वो सही मर्म उसको ख्याल में नहीं आएगा, क्योंकि ये सारी मिथ्या श्रद्धाएं पड़ी है ना। ऐसे ही जो अभी हम 20 प्ररूपणा देख रहे हैं, मार्गणा आदि देख रहे हैं, उसके बारे में भी कोई भ्रांति भूल चलती हो, ये गुणस्थानों के भी बारे में, ये नाटक समयसार अपने नाम सुना होगा, बनारसी दास ने लिखा, उन्होंने समयसार के साथ गुणस्थानाधिकार जोड़ दिया पीछे, और श्रीमद जी ने, राजचंद्र जी ने ये गुणस्थान का अभ्यास चाहिए ऐसा लिखा है उनके, आपने शायद, हाँ क्यों, और ये सारे गोमर सार वहां से प्रकाशित हुए थे, अभी जो कुछ है बीच बीच में ग्रंथ मिलना बहुत मुश्किल हो गए थे, तो अगस्त्य समय सार पंचासी का ये सारे पांचों परमागम मोक्ष मार्ग प्रकाश के ये सारे अगस्त्य उन्होंने छापे हैं, गोमट सार वहां से छापा है।
सबसे पहले गुजराती में जो शास्त्र बने वो सोनगढ़ में नहीं बने,
सोनगढ़ में तो बाद अगस्त्य में बने
और गुरुदेव ने अगस्त्य
मंगवाए
और वहां पड़े।
हाँ, क्योंकि अगस्त्य बाहर पड़े और वही तो समय सार उनके हाथ में गया।
और श्रीमद जी की बहुत इच्छा थी कि शास्त्र गुजराती में बने और ये सारा काम और लल्लू जी महाराज जी
ट्रांसलेशन का।
और शीतल प्रसाद जी है ना,
हाँ
वो काफी आगाज रहते थे,
पता है। और शीतल वो गजब का उनका अभ्यास था। और
ओ, हाँ। ओ, 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 मेरे पास उनका योग सार है, वो मेरे गुरु जी ने जो उन्होंने छपाया, क्या डिटेलिंग करता करते हो, बहुत अभ्यासी।
हाँ। तो देखो यानी अरिहंत और सिद्ध अजीव तत्व में सुनकर एक रात की नींद चली गई, तो एक तत्व का स्वरूप सुनकर अगर नींद उड़ जाती हो तो सात तत्वों का यथा योग्य अभ्यास करके अनादि की मोह निद्रा उड़ जाएगी, है ना? क्योंकि हम सोए तो है और सम्यक तो की प्राप्ति होगी, इसमें क्या आश्चर्य है। और ये जो हुआ है वो लिखा है इसमें, ऐसी बात नहीं कि कुछ लिखने के लिए लिखा है, यहाँ कोई भी ऐसे उदाहरण वगैरह दिए है ना, एक्चुअल घटित हुए ही सारे लिखे, इसमें कोई बात यानी आपको समझाने के लिए आडंबर नहीं, ऐसे कोई घटित घटना ही बताइए, ऐसे कोई झूठ मूठ भी नहीं, कल्पना से भी नहीं लिखी, कोई दृष्टांत भी जो दिए है कोई एक भी दृष्टांत इसमें से कल्पना करके ऐसे रचना करके कथाएं नहीं बनाई। देखा आश्रव तत्व, अभी आश्रव तत्व की डेफिनेशन, शुभाशुभ विकारी भाव उत्पन्न होना आश्रव तत्व है, ये सिंपलेस्ट परिभाषा दी है, इसके डिटेल्स भी देखेंगे हम। क्या कहा? शुभाशुभ विकारी भाव, किसको विकारी कहा? शुभ को भी और अशुभ को भी, दोनों को। वही प्रमाद अवस्था, बात आई थी ना प्रमति की, क्या प्रमाद हुआ? शुभ या अशुभ विकारी भाव उत्पन्न होना, यही प्रमाद। तो शुभाशुभ विकारी भाव उत्पन्न होना आश्रव तत्व है, यह तो हुई स्थूल परिभाषा जिसको हम कहते ना, हाँ ऊपर चल गए। विस्तार से देखा जाए तो जो हमने सुबह भी बात की थी, आश्रव कौन कौन से है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। अभी आपको ये गुणस्थान भी याद आएंगे, मिथ्यात्व पहले गुणस्थान में है, अविरति चौथे तक है, प्रमाद छठे तक है, तक जब कहते तो पहले से छठे तक, अविरति पहले से चौथे तक, मिथ्यात्व मात्र पहले गुणस्थान में है, अविरति पहले दूसरे तीसरे चौथे में है, प्रमाद पहले से छठे तक, कषाय पहले से दसवें तक,
सूक्ष्म सांप्राय,
सूक्ष्म सांप्राय ना, और योग कहां से कहां तक है? तेरहवें तक। हाँ, कहाँ से तेरहवें तक? पहले से, पहले से तेरहवें, ख्याल में आया ना? हमने परिभाषा देखी ना मोह और योग के निमित्त से, यही तो बात है।
आपने बताया मिथ्यात्व पहले में, ये तो दूसरे में मिथ्यात्व नहीं,
नहीं दूसरे में मिथ्यात्व नहीं, मगर दूसरा वो देखो ये सम्यक्त्व है छत और ये भूमि है, वो मिथ्यात्व है, अब वो वहां से टपका नीचे गिर रहा है, रास्ते में दूसरा आया और ये यहाँ पहुंचते ही मिथ्यात्व हुआ, अनंत अनुबंधी है परंतु मिथ्यात्व नहीं है, ऐसी वो दशा है। सम्यक तो छूट गया है और मिथ्यात्व में जा रहा है, वो कितना एक समय है या अधिक से अधिक छह अवधि है, बहुत अल्पकाल है,
लेकिन वो जाने वाला तो ही
बिल्कुल मिथ्यात्व में ही जाएगा, वहां से उल्टा ऊपर नहीं जाएगा, या आपके यहाँ छत पर छिपकली चलती है ना और गिर गई तो गिरते गिरते ऊपर नहीं जाएगी, अभी नीचे गिरेगी फिर चढ़कर जाएगी, वो अलग बात है। तो ऐसे सम्यक तो छूट गया है और वो मिथ्यात्व में ही जा रहा है, जाते जाते जितना समय लगता है, एक समय या दो समय या दस समय, वो क्या कहलाएगा? सासा दन
वनस्था। एक सवाल पूछना है, शायद क्यूरियोसिटी के लिए, वहां से तो वो गिर रहा है और जाने वाला भी नीचे हुए गारंटी लेके वो मिथ्या तो है, तो ये स्टेप क्यों दिया?
वो दूसरा गुणस्थान जब हम समझाएंगे जास्ती क्लियर करके बताऊंगा,
क्योंकि उसके कौन से समय से गिरता है, क्या है,
ये सब
अलग बात
है।
वो उस हाँ
अज्ञान भी तो चौथे
में नहीं, नहीं अज्ञान की वो बात यहाँ नहीं लेनी।
पहले से दूसरे या तीसरे में तो नहीं जाता,
चौथे जाते हैं। और फिर भी पहले से तीसरे में जाने वाला कौन सा साधे मिथ्या दृष्टि, वो बात आएगी सब जब वहाँ गुणस्थान लेंगे ना, कौन से कहाँ जा सकता है, क्यों उसका ऐसा कहा, वो बात आएगी गुणस्थान में सारी। हाँ तो हम यहाँ देखते आश्रव तत्व जो है ना, आश्रव में हमने क्या क्या देखे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये जीव के परिणाम आश्रव है। किसमें लिया है? जीव के परिणाम में। इन्हें भाव प्लस आश्रव भावाश्रव कहते हैं। शीला बहन का प्रश्न था ना, भावाश्रव क्या है, द्रव्याश्रव क्या है, जीवों के भाव है ना, ये जीव में उत्पन्न हुए हैं, उनको भावाश्रव कहेंगे। पुद्गल में कर्मों में, कर्मों का आना जिसको हम कहते हैं, मिथ्यात्व के निमित्त से जो मिथ्यात्व कर्म का बंद हो रहा है, मोहनीय कर्म का जो बंद हो रहा है, सभी आठों कर्मों का जो बंद हो रहा है, उसको हम कहेंगे द्रव्याश्रव। यहाँ जीव के परिणाम है, उसके निमित्त से आठों ही कर्मों का बंद होगा, तो बंद होने के पहले वो कर्म रूप हो जाएंगे, फिर वो बंधेंगे, तो उसको हम कहते कर्मों का आना, समझाने के लिए उसको कहेंगे द्रव्याश्रव। यह तो जीव की अवस्था है, कर्म की अपेक्षा से देखने पर उसी समय में, समय एक ही है, जीव यहाँ मिथ्यात्व अविरति आदि भाव करता है, उसी समय नवीन कर्मों का आना, ऑलरेडी पूर्व में कर्म थे ही थे, उसमें नवीन आकर जुड़ गए, तो जो कर्मों का आना है उसको कहेंगे द्रव्याश्रव। द्रव्य ने पुद्गल, द्रव्य का आना, आश्रवना ने आना, उसको कहेंगे द्रव्याश्रव। अब बंद तत्व की परिभाषा देखते हैं, इसमें भी भाव बंध और द्रव्य बंध, ऐसे जीव और कर्म की अपेक्षा से दो भेद हैं। शुभाशुभ विकारी भावों में यानी मोह राग द्वेष में, मिथ्या तो भी लिया इसके साथ, इसमें अटकना भाव बंध है, यानी जीव उसी में अटका हुआ है, उसी में उसकी रुचि पड़ी है। शुभाशुभ भावों की ही रुचि है ना, अकेले होना अलग बात है और उसी में अटकना बात अलग है, ये रुचिपूर्वक उसमें स्वयं अटका हुआ है, तो उसको कहेंगे भाव बंध, भावों से उसमें बंधा हुआ है। और नवीन कर्मों, पुराने कर्मों के साथ बंध जाना, वो द्रव्य बंध है। पहले ऑलरेडी कर्मों का स्टॉक था ही था, पुद्गल आकर पुद्गल से जुड़ गया, नहीं समझे, आपके राजकोट में कोई गाय भैंसे है क्या, किसी के घर में वगैरह रखते ना, तो उसको रस्सी से बांधते है ना, गाय को रस्सी से बांधते हैं कि नहीं बांधते, दोरी से बांधते हैं ना, हाँ, तो दोरी से दोरी को बांधते हैं कि दोरी से गाय को बांधते हैं, गाय को बांधते हैं, कैसे बांधते हैं, गाय की पूछ और दोरी इसको नहीं,
दोरी बांधते हैं,
समझ में है ना, यानी हमने ऐसा भी आपने कंकन बांधा, क्या किया, वो धागे से धागा बांध लिया, राखी बांध दी ना आपने, भाई को राखी बांधते तो क्या करते है, वो दोरी से दोरी को बांधे,
भाई को नहीं बांधे,
भाई को नहीं बांधे। तो ये क्या हुआ, देखो जीव तो जीव है, परंतु पुराने कर्मों में नए कर्म आकर बन गए, फिर वो जीव के साथ रहेंगे भवन भवन तक, तो हम क्या कहेंगे, जीव ने कर्म को बांधा या कर्म जीव के साथ बंधा, कहने के लिए ठीक है, परंतु एक्चुअल में क्या हुआ, अरे पुद्गल के साथ पुद्गल बंधा, क्योंकि पुद्गल में बंधने की और छूटने की ताकत है, जीव तो अरूपी है, फिर भी कहने की पद्धति है हो, क्योंकि कर्म और जीव के प्रदेश ये एक ही जगह है, एक बंधन रूप से रहते हैं, और जब उसका समय होता है तो छोड़कर चले जाते हैं। कहेंगे, कहने में कोई बात नहीं, परंतु एक्चुअल में क्या है ये हमको विजुलाइज करना है, बस इतना ही करना है। तो नवीन कर्मों का पुराने कर्मों के साथ बंध जाना द्रव्य बंध है। कर्म के आने को आश्रव कहते हैं और कर्म के बंधन को बंध कहते हैं। ये कर्मों की तरफ से परिभाषा हुई। जीव की तरफ से क्या देखा हमने, शुभाशुभ भाव उत्पन्न होना ये भावाश्रव है, और उसी में अटकना ये भाव बंध है। द्रव्य किसको कहना, कर्मों की तरफ से बात करेंगे। कर्मों का आना द्रव्याश्रव है, और कर्म कर्म के साथ बन गए वो द्रव्य बंध है। समझ गए द्रव्य और भाव की बात अनिला बेन?
हमारा जो राग द्वेष छूटता है वो भाव बंध होता है।
हाँ, राग द्वेष है, राग द्वेष उत्पन्न होना वो आश्रव है,
और
भावाश्रव, और हम उसी में अटके हुए हैं, वो भाव बंध। नीलाबेन ख्याल में आया? हाँ, दो दो भेद है हरेक के, आश्रव के दो और बंध के दो। अभी हम संवर को देखेंगे। संवर तत्व, आश्रव का रुक जाना संवर कहते हैं। तो हम अभी इसमें भी भाव और द्रव्य दोनों लगाएंगे। आत्मा के अनुभव में लीन रहने पर यानी शुद्धोपयोग में जीव को मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। यहाँ जो मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते कहा, मोह ने मिथ्या तो उत्पन्न नहीं होता, और राग द्वेष में अनंतानुबंधी लेना मुख्यतः, क्योंकि चौथे गुण स्थान में है, उसको बाकी तीन कषाय चौकड़ी है ना, शुद्धोपयोग में है, तब उसके अबुद्धिपूर्वक चल रहे हैं। परंतु मोटे तौर पर जो हिंसा झूठ चोरी आदि भाव चलते थे वैसे उत्पन्न नहीं होते, उसको उत्पन्न नहीं हुए कहने में आता है। कहेंगे सही, परंतु ऐसा मानना नहीं, क्योंकि वहां जो सूक्ष्म राग चल रहे उतना बंद भी है। अभी हमने देखा था ना, 41 प्रकृति का बंद रुक गया, बाकी प्रकृति बंद रही है। क्यों? क्योंकि बाकी तीन कषाय चौकड़ी का वहां चल रहा है अबुद्धिपूर्वक का राग, जो उस जीव के ख्याल में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसका उपयोग अपने शुद्धात्मा में लीन है, परंतु वहां वो मंद रूप से पन तीन अन्य कषाय चल रही है, कषाय चौकड़ी। इन ख्याल में आता है
शुद्ध भाव में नहीं बांधेगा।
हाँ, बांधेगा। चौथा गुणस्थान, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, दसवें तक भी शुद्ध भाव ही है, फिर भी उस काल में भी उसको मंद कषाय है ना, उसके कौन से कषाय चल रहे हैं, चौथा गुणस्थान में है, अनंतानुबंधी नहीं हो रहा, परंतु वहां भी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन का क्रोध या मान या माया या लोभ हो रहा है। तो चारों चारों बन रहे ना, चार त्रिक 12 बन रहे, मिथ्यात्व में 16 बन रहे थे, और नौ नौ कषाय में जो यथा योग्य।
तो कर्म उदय उदय जा रहा है इसलिए है ना, हाँ, कर्मों का आना जाना चालू है इसलिए।
हाँ, परंतु अभी मिथ्यात्व का बंध नहीं हो रहा, अभी अनंतानुबंधी का नहीं हो रहा, जो बाकी है उसका बंद हो रहा है। हाँ, बाकी जिसका उदय है ना उतने का बंद भी हो रहा है, क्योंकि हम तो शुरू में क्या सीखते है, शुद्धोपयोग में है तो बंद नहीं है, और बाकी है शुभ अशुभ में है तो बंद है, परंतु वहां भी मंद कषाय चालू है, नहीं तो पूर्ण वितराग कहना पड़ेगा उनको, नहीं तो चौथा गुणस्थान पांचवा गुणस्थान होगा ही नहीं, एकदम डायरेक्ट वो पूर्ण वितराग हो जाएगा। ख्याल में आता है ना?
हाँ।
परंतु जो पहले शुरू में पढ़ते हैं उनको ऐसा ही कहेंगे, शुद्धोपयोग में उसको बंधने, बंधने कैसा, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का बंधने तो नहीं कहेंगे। आपने पहले सुना ना, वो 99,999 खर्चा लिया और उसमें 90,000 दे दिए, तो हम क्या कहेंगे, अभी नहीं के बराबर, नहीं कहो तो भी चलेगा, दे दिया उसका, आ गया ऐसा। हाँ, परंतु है वहां पर, ऐसे यहां भी समझना, मिथ्या वहां तो 90,000 कीमत रखी थी, एक्चुअल में मिथ्या तो कीमत अनंत है। अब अनंत दे दिया तो बाकी नगर ने कुछ है कि नहीं है, इतनी बराबरी उसकी, वो तो जाने वाला ही है नियम से, इसलिए कहेंगे बंद ही नहीं है, वो अपेक्षा समझना, क्योंकि ग्रंथों में भी ऐसी अपेक्षा लिखेंगे, समय सार के बंध के बंध अधिकार में ऐसा लिखा है। अरे ज्ञानी की तो भोग के काल में भी निर्जरा होती है, तो अज्ञानी को लगता है अच्छा है क्योंकि उसको भोग की रुचि है ना। और फिर कहेंगे वो यही पार्शियलिटी कैसे, हम भोग करेंगे तो हमको बंध है और वो भोग करे तो निर्जरा है, ये ऐसा उल्टा पुल्टा कैसा है।
अरे बहुत तीन दिन तक आर्गुमेंट चली थी, या जब मेरे गुरु जी आए ऋषि मेहता आए,
अच्छा
उसकी बेटी ने क्या इसी की पर।
अच्छा
ऐसा है ना कि चक्रवर्ती भोग भोगता है और निजरा होती है, छन्ने हजार शादियां बनाता है, और क्या बात है।
क्योंकि अज्ञानी की दृष्टि बाह्य संयोगों पर और भोगों पर होती है ना, तो भोग के काल में जो निर्जरा हो रही है वो वितराग भाव से हो रही है, भोग के कारण नहीं है, भोग के काल में हो रही है पर भोग से नहीं हो रही है, क्योंकि उस काल में भी अनंतानंद और मिथ्यात्व है ही नहीं, उसके उदय रूप नहीं है। और वो तो चक्रवर्ती तो क्षायिक समय दृष्टि थे भरत, तो सत्ता में भी नहीं था, तो उतनी मात्रा में उनकी निर्जरा भी चल रही थी कि नहीं चल रही थी, अभी वो बात आएगी। पहले निर्जरा क्या होते कहाँ पता है हमको, हम देखेंगे। यहाँ संवर की बात चल रही है, आश्रव का रुक जाना इसे संवर कहते हैं। आत्मा के अनुभव में लीन रहने पर यानी शुद्धोपयोग में जीव को मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, इसलिए उसे आश्रव और बंधन नहीं होते। ये अभी ये तो स्थूल रूप से अभी यहाँ बताया है, फिर कहेंगे चौथे गुण स्थान वालों को आश्रव बंध भी है और संवर निर्जरा भी है।
उज्ज्वला में जब शुद्धोपयोग की बात हम करते हैं तो वहाँ क्या हम निर्विकल्प दशा ले रहे?
हाँ, निर्विकल्प की दशा है शुद्धोपयोग, आत्मा के अनुभव में है वो, आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का आस्वादन उसको चल रहा है। निर्विकल्प जब कहते हैं तो दो अपेक्षा से निर्विकल्प होते हैं, विकल्प का एक अर्थ है राग और विकल्प का एक अर्थ है भेद। जब हम कहेंगे निर्विकल्प अनुभूति चल रही है तो आत्मा में भेद किए बिना अखंड अभेद की अनुभूति होना उसको निर्विकल्प कहेंगे, और दूसरी ओर से जो विकल्प चलते हैं मैं शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये तो विचारात्मक विकल्पात्मक भूमिका है, यानी जीव में उसने भेद किया
शुभ भाव चल रहा
है, तो ये उसका रागात्मक विकल्प है, शुभ भाव है। जब तक ऐसे चलेगी विकल्प तब तक अनुभूति नहीं है, और जब अनुभूति होती तो ये विकल्पों की जरूरत नहीं है। जैसे आम खाने के पहले हम ये ऐसा है मीठा ऐसा है वो विचार चलेंगे, अब खाने के काल में वह अनुभव चल रहा है तब विकल्प की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही विकल्प कब तक होते हैं? जब तक निर्णय नहीं होता, निर्णय होने पर अभी विकल्प की जरूरत नहीं, अभी डायरेक्ट आत्मा का आस्वाद ले लो, अभी क्या जरूरत है विकल्पों की। विकल्प तो समझने के लिए और समझाने के लिए थे, शिष्य को कैसे समझाए तो समझाया ऐसा है आत्मा वैसा है वैसा है, शिष्य क्या करने लगा उसी को रटते रहा। ध्यान के नाम पर विकल्पों के जोर जोर से विकल्प उठाता रहा तो उसको अनुभूति कैसे होगी, ख्याल है ना? तो वो जब विकल्प के द्वारा आत्मा का स्वरूप समझ में आया तो भी आत्मा को डायरेक्ट जानो, ये जानने वाला तो मैं हूं ना। जैसे आप सुबह मिरर के सामने जाते हैं, आईने के सामने, वहाँ क्या दिखाई देता है?
ऐसे तो अपना चेहरा देखते
हैं, चेहरा मिरर दिखाई देता है, तो वहाँ चेहरे की तरफ चेहरा तो दिखाई दे रहा है, उसी काल में मिरर को देख सकते कि नहीं सकते?
देख सकते।
तो उस समय चेहरे का क्या होता है? है वहीं पर फिर भी दिखाई नहीं देता, आईना दिखाई देता है, तो क्या होता है? गौण हो जाता है। और हम मुख्यतः किसकी जान रहे? आईने की। तो उसके सामने और भी कोई मुंह हो रहा है या कोई अन्य अन्य हमारे पीछे से कोई आ रहा है या कोई दूसरी चीजें भी उसमें झलक रही है, तो हमने किसको देखना किया मुख्य? आईने को, मिरर को। ये रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पर, तो जिसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है वही तो मिरर है। तो क्या हम ऐसा कहते पहले सारे रिफ्लेक्शन को मिटाओ फिर मैं मिरर को देखूंगा? ऐसा कभी होगा ही नहीं। जिसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है वही तो मिरर है, फिर भी हम रिफ्लेक्शन को गौण करके मिरर को देख सकते हैं। ऐसे यहां पर मैं स्वयं आत्मा हूं, ज्ञायक हूं, तो क्या सभी का जानना मिट जाएगा यहाँ और फिर मैं अपने को जानूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसी काल में हम जानने वाले को मुख्य करके जान सकते हैं, फिर बाकी चीजें गौण हो जाती हैं। हाँ, तो इस तरह से उसको जानना, आत्मा को जानना, उसको हम आत्मानुभव कहेंगे। तब ये राग वगैरह द्वेष वो सारे गौण हो जाते हैं, पर्यायों को सबको गौण करके हम अपने शुद्धात्मा को जानते रहते हैं, उस काल में आत्मा की अनुभूति होती है। उसकी और चर्चा करेंगे हम, ये संवर तत्व से आगे देखेंगे। अब यही रुकते हम। बोलो चौबीसों भगवान की जय।